राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/7/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री रामपुरम थाने में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 ऐसा तेरे भीतर सांख्य 39वां श्लोक दूसरे अध्याय का ऐसा तेरे भीतर सांख्य ऐसा जो 38वें में 38वां श्लोक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्ध से नैवं पापमाशति सुख दुखे समय कृत्वा सुख दुख को समान करो लाभ अलाभ को हानि पराजय को समान समझ करके मगर राग द्वेष न हो हर शोक न हो न लाभ में हानि में कुछ फर्क नहीं ऐसे समय फिर युद्ध करो पाप नहीं लगेगा वही समता तो कहते ऐसा समता है सांख्य अभिहिता 11 से 30 तक सांख्य दृष्टि तो कह दी योगे तो इमान सुन यही समता योग से कर्म योग से बताता हूँ ये भगवान ने कहा। और यही बात 30वें अध्याय 30वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि महाराज जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है तो कर्म ही घोरे व्यंग की होने ऐसी घोर कर्मों में क्यों लगाते हो ये यज्ञ में दान में तप में इनमें भी लगना चाहिए नहीं फिर युद्ध में क्यों लगाते हो आप व्यामिश्रेणी वाक्य ना आपके वाक्य मिश्र मार्ग देते हैं। अच्छा एक बात कहो महाराज तद एक ये न स्त्रियो मापयो दो आया व्यामिश्रेणी वाक्य न बुद्धि मोयसी मिले हुए से वचन कहते हो मेरी बुद्धि मोहित सी कर रहे हो वास्तव में आपके मिले हुए वचन नहीं है मेरी बुद्धि को मोहित नहीं करते हो बुद्धि तो शुद्ध करते हो आप पर मेरे को मिले हुए वचन मालूम देते हैं और बुद्धि को मोहित कर रहे ऐसा दिखता है भगवान देते हैं भैया लोग इसमें द्विधा निष्ठा दो निष्ठा कही है मैंने ऐसा से भी था सांख्य बुद्धि योगी सुनो तो दो निष्ठा मेरा वर्णन है तो दो निष्ठा बताइए सांख्य योग और कर्म योग ये दो निष्ठा कही भगवान कहते हैं सांख्य योग ऊपर से उबाला बालक है भगवान तो भगवान कहते हैं निष्ठा जो है असमन द्विधा निष्ठा लोग में दो निष्ठा है जब से संसार की सत्ता रहती है मेरी उपासना में लगते हैं उसमें कर्मयोग है और सांख्य योग है ये दोनों निष्ठाएं अलग अलग है परंतु भक्ति को नहीं बताया है भक्ति निष्ठा नहीं है भक्ति जीव की खुद की निष्ठा नहीं है वो तो भगवान निष्ठ होता है उसकी निष्ठा भगवान में होती है भगवान एक परमात्मा ही है तो वो लौकिक निष्ठा नहीं है लौकिक निष्ठा के दो भेद हैं लौकिक निष्ठा में ज्ञान योग है कर्म योग ये दोनों हैं इनमें दोनों में एक स्थिति होने पर भी तत्व एक ही मिलेगा तो ये 5वां अध्याय में है आज हमारा 5वां अध्याय चला है तो ये दो निष्ठा है तो दो निष्ठा फल में ही साधन में जो है, फल में दोनों एक हो जाते हैं। ये चौथा और पांचवा श्लोक है, पांचवा अध्याय का। आप जो
कहते हैं वो फल में
फल मांगते हैं, फल ये मांगते हैं कि कर्म योग से तो केवल मल दोष दूर होता है और उपासना से केवल विक्षेप दोष दूर होता है और ज्ञान आवरण तो ज्ञान से दूर होता है। तो फल दो हुए कि नहीं, अंतःकरण के तीन दोष मल विक्षेप और आवरण, उसमें मल दोष दूर करने के लिए तो कर्म योग, विक्षेप दूर करने के लिए भक्ति योग और आवरण दोष दूर करने के लिए ज्ञान योग, ये इनका फल बताते हैं। तो भगवान ऐसा कहते हैं सर, तो भक्ति योग भगवान का विलक्षण है, ये बहुत विचित्र बात है। अब इतना सुंदर काम से लावा है सब बात बताऊ, पर ये सार बात आपको बताई मैंने। तो इस बात से यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र भक्ति योग का है, और वासुदेव सर ये भी भक्ति योग का ही श्लोक है, ज्ञान योग का नहीं है, परंतु ज्ञानी का परिणाम है। इसमें ज्ञानी है, चार तरह के भक्त होते हैं, अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी। तो इसमें ज्ञानी आया, ज्ञानी को सबसे श्रेष्ठ बताया भगवान ने। ज्ञानी क्या वासुदेव सर्व इसी ज्ञानवान, बहु नाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्य से। कैसा ज्ञानवान? वासुदेव सर्व इसी ज्ञानवान माम प्रपद्य से समात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्व है ये ज्ञानवान, तो ज्ञानी भक्त का वर्णन है। चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त, तो ज्ञानी शब्द कहते ज्ञान निष्ठा नहीं है, ये है भक्ति निष्ठा है। तो तुम्हें तो भक्ति में ज्ञानी भक्त होता है, एक अर्थार्थी भक्त होता है, एक आर्थ भक्त होता है, एक जिज्ञासु भक्त होता है, एक ज्ञानी भक्त होता है। जैसे प्रहलाद है, सब जगह परमात्मा की योग माम प्रसिद्ध सर्व किसा पूछता रहे तेरा भगवान कहाँ है। पहले ये बताओ कहाँ नहीं है, बताओ फिर उसमें बताओ मैं यहाँ कहाँ नहीं है। तो मैं मोह में खड़े खम्भ में सर्व व्याप्ति में आप में मेरे में खड़ग में खम्भ में भी, खम्भ में भगवान है, घर में भगवान है। अभी काटता हूँ तेरा भगवान कट जाएगा, तलवार मलाओ निकलेगा ऐसे निकलेगा विशेष। तो विकराल मुख अरे बाबा कोई बबली सिंह नीचे से मृगन न मानुष न मृग है न मानुष है, क्योंकि वरदान दे गया मृग से मरूंगी मनुष्य से मरूंगी ब्रह्मा जी करूंगी सृष्टि से मिलूंगी सूखे से मिलूंगी गर्म से मिलूंगी ठंडे से मिलूंगी सूखे से मिलूंगी आयर से मिलूंगी बाहर मिलू नहीं भीतर मिलू नहीं दिन में मरू नहीं रात में मरू नहीं लोह से मरू नहीं नकर से मरू नहीं ऐसा बदलाव लिया। तो भगवान ऐसे नहीं कहता मनुष्य मनुष्य नीचे हो चतुर्भुज बिकरा ऐसे जाने वाला डर जाएगा नहीं तो वहां देवताओं स्तुति करी है इंद्र आया एक स्तुति एक श्लोक एक एक श्लोक निकले बारे ऐसे कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता ये क्यों क्रोधी हो रहे इनको शांत करो। लक्ष्मी का मन डर जाने पड़ा ऐसा रूप मैंने तो कभी देखा नहीं, इस बात से भय लगता है। देवता भी ठहरते वापस लोग एक एक श्लोक एक एक श्लोक एक एक श्लोक एक श्लोक बोला भागे वहां से स्तुति करते ठहर नहीं सकते। प्रहलाद को कहा लक्ष्मी जी कहा बेचा युवराज ही करो चले गए पास में चरणों में प्रहलाद नहीं डरा लक्ष्मी जी ने डर गए प्रहलाद को दिया उठा कर को दिए एक आदमी एक बड़े बड़े नख लोही में सने हुए और इसी तीर कर दिए प्रगट हुए प्रगट हुए देश युद्ध करने लगा पटक करे और गोदी में ले लिया। अब नीचे है कि ऊपर है बता और भगवान के दरवाजे में बाहर है कि भीतर है और दिन सुबह शिव रहा है आज दिन में अब रात है कि दिन है अब सब बता दी, सब बता बता कि नख है, ईला है, सूखा है, कैसा है, लो है, लकड़ है, क्या है, ये चीज पेट फाड़ दिया, पेट फाड़ और उसकी आंचें थी दे दी गले में। अब पहले तो बाबू जी फूट सा बड़े लगा लिए बबूत भयंकर चला चला गया प्रहलाद को लिया गोदी में और लगे चाटने लगे। अब पशु तो चाटे और क्या करे, गाय राजी हो तो क्या करेगी, अब गाय पर जाओ ज्यादा राजी होगी चाटे गया भगवान मृग नृसिंह नृसिंह बने तो चाटे प्रहलाद को चाटने प्रहलाद डरते ही नहीं हाथ में ले जाए ऊपर हाथ में जाए बड़े बड़े लोग राजकुमार स्वामी मूर्ति अपने गीता प्रेस से चित्र निकला है भागवत रत्न प्रहलाद उसमें आप देखो इतना क्रूर है परंतु भगवान का मुख है सौम्य मुख है नृसिंह भगवान का मुख प्रहलाद में चाहते है बड़ा स्वामी बड़ा शांत मुख क्रूरता नहीं है डर नहीं लगे सुहावना लगे ऐसा मुख कैसा मुख प्रहलाद के लिए ऐसा तो सब कुछ भगवान है तो वासुदेव सर्व में से ये प्रहलाद है भक्तों में प्रहलाद प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यास अम्बरीश सुख सौम्य भीष्म दालगम बोलो पुण्यानिमान भागवतान भागवतान स्मरानी भागवत का स्मरण करते हैं भक्तों का तो वहां सबसे पहले प्रहलाद का नाम लेते हैं और प्रहलाद के नाम में गुरु जी का नंबर दो आया है प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक ऐसा प्रहलाद को समझ लेते हैं भगत शिरोमणि भे प्रहलाद भगत शिरोमणि भे प्रहलाद तो भगवान को शिरोमणि है कहाँ है वो कहाँ नहीं है खम्भे पे है कभी मार दू खम्भा काट दू चले भगवान ही कट जाएगा प्रहलाद से भगवान कट जाएगी कटने से भगवान नहीं रहेगा अरे आत्मा के लिए नैनन संदन की सुधा नहीं नैनन दाति बाबू का न चैनन के लिए हम चाह न सो से मारू सर तो ये भी स्वयं करता नहीं परमात्मा आयुष तो परमात्मा कैसे कट जाएगा परंतु पिताजी जानते नहीं अग्नि में जला दिया तो जल रहा है कि ये मर नहीं रहा है खुश हंस रहा है प्रसन्न हो रहा तो प्रहलाद कहता है पिताजी से कि महाराज आपके तो अग्नि है कि मेरे पास में आओ आप मेरे पास में आ गए उतार समय चंदन की पंख सीधा उस लोग तेरे तेरू अग्नि जलाती नहीं राम नाम जपता कुतो भयम सर्व ताप समनयिक भेषजम जो राम राम करता है संपूर्ण तापों को दूर करने वाला खास हो राम नाम जपता कुतो भयम सर्व ताप समनयिक भेषजम एक नाम अद्वितीय औषध है सब ताप दूर करने वाली राम नाम जपता कुतो भयम सर्व ताप समनयिक भेषजम पश्चात मम गात्र संविधो आप पधार लो मेरे शरीर के पास मागर देखो बढ़ जाए पहले ही बाबा जी पश्चात मम गात्र संविधो पाप को भी सरला पाप को भी सरला चलती शीतल ठंडे जल की तरह बैठ दिया आज लगती नहीं शीतल जल में बैठा हो ऐसी बात बोलो कैसे जला उस पानी में वो जलता है होली का ने कहा मैं जला दूंगी मैं करती हूँ अग्नि का स्नान अग्नि मेरे को जलाती नहीं है प्रभात गोली गोदी में देर बैठी चाह चाह बची जाए प्रभात भगत को राग नंद में तेरे चरणों की दासी माँ कह रही है पर वह तो बैठ गई था प्रहलाद जी नहीं कर गए जो हुआ तो होली होली हो गई भगवान के लिए भारी हो गई अरे वो होली हो गई, अरे होली हो गई, सब खत्म ही हो गई। प्रहलाद जी निकल गए, होली खेलता है ना, होली में बीच में लकड़ी का पड़ जाती है, वो प्रहलाद तो बस गया, होली बल गई। जो एक बार बड़ी है, बारह महीना बैठे पड़े, बारह महीना बैठे पड़े, भगत क्या, भगत का बुरा चाहे जो कतल हो जाए। सुनिए भगतों की मजे तो भगवान करे, सुन भाई भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए। कुछ लुटने की छोड़ बली पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम गुण गाया। उभरे यूं भक्तों ने भगवान तो लगताया, भगत याद करते ही तुरंत उठ जाया। हरि लीना एना कुछ बोली ना मार, खागल का खाल कागला खाई, खाल कागला खाई, भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए। निश्चित है, सदा निश्चित रहते भगवान। अब उनका शोक कहते योग खेम में हम गौ में जाके 22वें श्लोक में कहते अरे मेरा चिंतन तो एक, मेरा ही चिंतन है, मेरा ही भरोसा है, एक आश्रो एक वर एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम से सातक तुलसीदास, अनन्याचिंतन तो माम ये जरा परिपाश के तेषा नित्यायुक्ता नाम योग क्षेम भाम्य। जितना प्राप्त किया है वो तो रक्षा करूंगा, अप्राप्त की मैं प्राप्त करूंगा, उनके सब मैं करूंगा। वो निष्ठा मेरी है, वो जो द्विजा निष्ठा में नहीं है, द्विजा में है ही नहीं, उसकी द्विजा मिट गई सभी। एक भगवान है, मेरा भाई ने कहता बस एक भगवान। मेरा कोई जहर का असर हो गया, सांप का असर हो गया, शंख का असर हुआ नहीं, जल में डुबोती डूबी नहीं। अब भगवान ऐसा करे कैसे मर जाए, फिर भगवान में प्रवेश होगी। हर मनुष्य का थैला इतना वो कुछ नहीं बचा, एक ओढ़ने का सोल बचा भगवान के मुख में, पता लगा नहीं यहाँ से आगे से कुछ नहीं। तो भक्तों की अलौकिक महिमा है, विचित्र महिमा है, ऐसी महिमा किसी की नहीं संसार। ये भक्ति की बात है, इस बात से बात होती है वो सर्वो ये हो जाएगा, डरो मत। आप बने यो मानो बसे सर्वत्र सर्वंजय मैं कैसे थी मोल जाएगी मस्त। नारायण 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 नारायण। अब देखो भाई, छह अध्याय से लेकर अंत तो कह दिया, पांच अध्याय बचे, भगवद गीता के पांच अध्याय बचे। आज पांचवा अध्याय आपको बताऊं, एक से छह तक तो सांख्य योग निष्काम कर्मयोग का विषय है, और सात से बाद सांख्य योगी निष्काम कर्मयोगी के लक्षण उनकी महिमा दोनों का, क्योंकि दोनों ही बात पूछी है पहले से लक्षणों में महिमा है। फिर तेरह से छब्बीस तक ज्ञान योग का विषय है, तेरह से छत्तीस तक ज्ञान योग का विषय है, और सताइस और अट्ठाईस उनतीस तीस उनतीस उनतीस तक भक्ति सहित वर्ण है, संक्षिप्त ध्यान अंतिम वास्तविक क्या है, दो चार किताब सब लोग में संबोधन या तो मन शांति श्लोक का विषय। अर्जुन पूछता है पांचवें अध्याय में, अर्जुन बात पूछता है, क्योंकि अभी चौथे अध्याय में अज्ञ से अशुद्धता न संशयात्मा में सीनाए लोगों से ना करो न सकू संशयात्मा। चालीसवें श्लोक में जो अज्ञ है अशुद्ध संशय है उसका पतन हो जाता है, ये बात हो गई। और योग के द्वारा योग संन्यास कर्मानंद और ज्ञान संचन संशयम आत्मंथन कर्मा निबंधन का मानते नहीं उसको, तस्मात अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न हुआ संशय को ज्ञान की तलवार से काट करके और योग मात्रिष्ट उत्तृष्ट खड़ा हो जाए, योग का कर्मयोग का अनुष्ठान कर सकते। तो यहाँ से कर्मयोग की महिमा कह दी, पहले बताया कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्य थी, तत्व योग से सरकार थी ज्ञान के समान कुछ नहीं है। अर्थी से नहीं ज्ञान है सरिषम, ज्ञान के समान कोई है ही नहीं पवित्र। तो अर्जुन पूछते हैं संन्यासं कर्मणां कृष्ण, अभी कहते हैं योग आदेश है तो कर्मों का संन्यास कहते हो, वहां जो ज्ञान की स्थिति कुछ नहीं है। पुनर्योगन से संस्कृत यहाँ योग की प्रशंसा करते हो, जैसे एक योग एकम तर्वे सुदेश आपका निश्चित हुआ हुआ कल्याण कारक वो बात कही है। दो बात कैसे आप भगवान के संन्यास कर्मयोग, संन्यास और कर्मयोग निश्चित करो वो बहुत दोनों कल्याण करने वाले है। इस बात से मैं कहता हूँ ज्ञान योग कर्मयोग कहता हूँ त्रोस्तु कर्म दोनों में शेष कौन सा त्रोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष कर्म संन्यासात योगी हमेशा कर्म योग श्रेष्ठ। भगवान कर्मयोग श्रेष्ठ बताते साहब कि महाराज कैसे संन्यास सांख योग तो बड़ा ऊंचा बताते कहते ज्ञे नित्य संन्यासी सांख योगी नित्य संन्यासी नहीं है, पहले कर्मयोग करे फिर भक्ति योग करे फिर सांख योग करे, तो ये कर्मयोग और भक्ति योग के अधीन है। परंतु उसका ज्ञे ऐसा नित्य संन्यासी ये सांख योग तो अनित्य सांख योगी है, अरे कर्मयोगी नित्य संन्यासी है। ये न द्वेष न राग करता है न द्वेष करता है, अनित्य पहले कर्मयोग करो भक्ति योग करो फिर सांख योग में जाओ, तो पहले तो दिया योग हुआ फिर सांख योग का फल रूप में इस बार अनित्य हुआ। और ये नित्य करो सांख कर्मयोग से हो जाता काम बिना पड़ा। निर्द्वंद महाभाव सुगम बंधात्म थे, जो निर्द्वंद होता है राग द्वेष रहित होता है सुखम बंधात्म राग द्वेष रहित होने पर सुखपूर्व मुक्ति हो जाती, मुक्ति में कोई जोर आता ही। अरे राग द्वेष छूट के मुक्ति होगी, मुक्ति हो जानवर से रही मुक्ति हमें छूट जाएगा, ये राग द्वेष हर कुछ रोग यही तो बंधन है, ये मिट गए भर दूत हो गया। कोई करके देख लेते भाई बहनों में कोई भी राग द्वेष मिटा दो हर्ष और शोक मिटा दो बिल्कुल मुक्त हो जाए गीता के अनुसार से। ये राग द्वेष मिटाता है कर्म योग, ज्ञान योग मिटाता नहीं है। इस वास्ते वो नित्य संन्यासी है सुप्रभात बंद मिटाता है। अब ये जो बात कही दोनों कल्याण करने वाले हैं, तो दोनों कल्याण करने वाले कैसे हैं? अब दोनों कल्याण करने बात बताऊ सांख योग प्रसंग वाला सांख योग को जो अलग अलग कहते हैं कि सांख योग का फल तो तत्व ज्ञान है, कर्म योग का फल है मद दोष दूर करना। सांख योग प्रसंग बाला प्रबोधन की न पंडिता बालक कहने वाला मूर्ख, क्योंकि एक व्यक्ति है सम्यक अच्छी तरह से ज्ञान योग में जाओ चाहे कर्म योग में सिद्ध हो जाओ वो भी और बिंदु थे फलम दोनों का फल एक हो जाएगा, तो निष्ठा दो तरह की है फल एक हो। इसका खुलासा करते हैं जब सांख्य प्राप्त स्थान तब योग ही अभिगम्य थे, जो स्थान सांख्य योग योग द्वारा प्राप्त होता है वो योग योग द्वारा प्राप्त होता है। इस बात से फल में एक सांख्य प्रसिद्ध वो ठीक देखता है। किसी मना संन्यास वो आपने कहा कि कर्मयोगी तो नित्य सन्यासी और सन्यास वो अनित्य सन्यासी कैसे कि सन्यास है तो महाभाव दुख महाभ तुम अयोगता बिना कर्मयोग के सांख योग कठिन पड़ेगा जल्दी प्रवेश नहीं होगा उसमें, बातें भले ही सीख लो सीखी हुई बातें और होती है अनुभव दूसरा होता है। तो सन्यास है तो महाभाव दुख महायोग तो दुख प्राप्त आयोग से योग के बिना पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करे फिर सांख योग में चलो सुगम पड़ेगा। योग युक्त और कर्मयोग युक्त है वो तो हमारा नसीर ऐसा मुनि है जो नशे ब्रह्म अधिगति बहुत जल्दी तत्काल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी सांख योगी ब्रह्म को नहीं कर्मयोगी बताए योग युक्त हो मुनि ब्रह्म नसीर अधिगति ब्रह्म अधिगति ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो मैंने कैसे हो जाता है कि योग यू तो वृद्धात्मा वृद्धात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतानि कुरुन्नपि न लभ्यते। योग युक्त कर्म योग युक्त है विशुद्ध आत्मा अंतरण शुद्ध है वृद्धात्मा शरीर पर अपना अधिकार है विशेष इंद्रियों पर अधिकार है शरीर पर इंद्रियों पर अंतकरण पर जिसका अधिकार है और सर्वभूत में आत्मा भूत परमात्मा वही जिसका आत्मा हो गया सब जगह देन साथ, वो कुर्बन न भी नहीं लिप्त से करता हुआ भी लिप्त नहीं होगा साथ, लिप्त क्या होगा शुद्ध हो जैसा है। कैसे महाराज ये तो कर्म योगी सब सांख योगी सुन के सांख योगी बात बताऊ सांख योगी नहीं वो किंचित करो मित योग तो मन ये तत्वविद, वो तत्वविद है, वो तत्वविद कर्म ज्ञान योगी तत्वविद क्या है कि मैं नहीं किंचित करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अपने में करना पर है ही नहीं, करते भाव अपने आता ही नहीं, खाने में पीने में चलने में फिरने में बोल बचाल में पीछे में मैं करता हूँ ये भाव नहीं आता, नहीं वो किंचित करूंगी तेरा क्रिया बताए, देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ सोता हुआ और श्वास लेता हुआ और प्रश्न बोलता हुआ पिछले मलमुस का त्याग करता हुआ हाथों से ग्रहण करता हुआ उनमें से निमिष इंद्रियों को मां को खोलता चलता हुआ इंद्रिया इंद्रिया से सुवर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया मार से बचे मैं करता नहीं हूँ, इसमें करते तो होता ही नहीं सब कुरुमन भी नहीं लिखते थे, वो कुरुमन भी तो निमिषन वो कुरुमन भी नहीं लिखते थे और निशन कैसे वो कर्म होगी कि ब्रह्मण आधार इसमें चलती बात एक बार शांति होगी फिर कमी होगी फिर शांति होगी फिर कमी होगी ऐसे चाल चलते अंत में भक्ति योगी उपसंहार किया पांचवा अध्याय का। तो पहले कर्मयोग की बात बताई, ये सांख्य योग की बात बता दी और फिर कर्मयोग क्या बताए, कर्मयोग दो तरह के होते हैं, एक कर्म प्रधान कर्मयोग से भक्ति प्रधान होते हैं उनको भी कर्मयोग कहते हैं, उनको भक्त भी कहते थे। ब्रह्मन्याधाय कर्मानि तो भक्ति क्या भक्त क्या करता है सब कर्म भगवान अवरण करता है संगम तत्व होती है पलू पत्र जल में कमल का पत्ता होता है जल में ही पैदा होता है जल में ही रहता है जल में भिन्न होते हैं जल में भेदन नहीं होता ऊपर पानी के ऊपर बूंद ऐसे दुखती जैसे मोती है जो अलग बिल्कुल लिप्त नहीं होता। तो ऐसे हम भगवान में सब अर्पण करते लिप्त नहीं होता और कर्मयोगी कैसे करता है कायेन मनसा बुद्ध्या काया से मन से बुद्धि से इंद्रिया से केवल इंद्रिया भी तो केवल इंद्रिया केवल काय न केवल न मनसा केवल या बुद्धिया और केवल इंद्रिया योग न कर्म कुरंती संगम से आसक्ति का त्याग करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फल त्याग तो उस शुद्धि के लिए कर्म फल का त्याग करके शांति प्राप्त होती। अयुक्ता जो योगी नहीं है क्षमता नहीं है तो फले संतो नहीं फल में आशीष है ये करूंगा तो ये फल मिलेगा धन मिलेगा मान मिलेगा बढ़ाई मिलेगी मेरे को लोग अच्छा समझेंगे अच्छा कहेंगे डूब जाता है। सर्व कर्मानि मनुष्यास्ते सुखमति और सांख्य क्या करता है सब कर्मों को नवद्वारे पूरे संन्यास सुखमास कर्म सब शरीर में सही होते हैं इंद्रिया में होते हैं शरीर में नव द्वारा वाले शरीर में होते हैं नहीं वो कुरवन न कार्यन न करता है न करवाता है करते तो मानो होता ही नहीं तो कसी वजह भगवान ये कैसे हुआ न भगवान नहीं करते न करते तो न कर्मा नहीं लोग प्रभु भगवान किसी के कर्म को प्रजा नहीं करते और न कर्म फल संयोग तो स्वभाव अनाधिकाल से फल की आसक्ति से कर्म करते आए हैं उनका स्वभाव है सब प्रभु इस वास्ते परमात्मा न देते किसी से पापम न से वस्तु करते हुए हो न किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं न पाप ग्रहण करते हैं। अज्ञान आवृत ज्ञानम अज्ञान से ज्ञान आवृत है तेन मुह्यन से संतवा फल से तो निबद्ध से फल में आसन से ऐसे बंध जाता है न ज्ञानासन आत्मा आदर्शन से उत्तिष्ट उसन से रहा नहीं है ज्ञान है तथा ज्ञान ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा ज्ञान योग के द्वारा ये शाम नाशित महात्मा ये शाम नाशित महात्मा अज्ञान नाशितम ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश कर दिया तेसाम आदित्य वाज ज्ञान प्रकाशित सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित करते थे परम परमात्मा को तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो ज्ञान अज्ञान नाशन ज्ञान का काम अज्ञान को नाश करना है, ये नहीं कि परमात्मा को बताने आदि जीवन शब्द आता है। अज्ञान का नाश ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग अज्ञान का नाश, ये उपयोग। फिर वो कैसे होता है ज्ञान, तदुद्धयात मानस तन निष्ठास्तपरायण गृत्य पुनरावृत्ति में ज्ञान निर्दोष कर तदात्मा ने उस परमात्मा में परम मन लगा हुआ है, बुद्धि भी परमात्मा लगी है, अपने भी परमात्मा लगे हैं और तत्परायण एक एक तत्व के परायण परमात्मा तत्व के परायण हो गए हैं। अपनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कर्मसा, ज्ञान से जिनके पाप संनष्ट होते हैं वे अपनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अपनरावृत्ति के लिए होती लोग किस लोग में जाते हैं अपनरावृत्ति, फिर लौट में नहीं आते, ऐसे हो जाते न तस्या प्राणावती वो सोमे उसके काम उत्क्रमण नहीं करे प्राण यहाँ क्रिया सारे उपाय बोले अपनरावृत्ति फिर बार धन बढ़ाई होगा। तो उनकी कैसी स्थिति होती है महाराज, जैसे कैसे है कि विद्या बिना युद्ध ब्राह्मण में गऊ में हाथी में और कुत्ते में और शानदार में समदर्शी होते, मान सब में एक परमात्मा को देखते हैं। लोग आज श्लोक को लेते हैं कि देखो समदर्शी भगवान ने कहा अब किसी के साथ खाओ, चाहे मित्र के साथ खाओ, कुत्तों के साथ खाओ, किसी के साथ खाओ, है ही नहीं समदर्शी ने समवर्ती ने नहीं है महाराज। आज लोग श्लोक लगाते हैं समवर्ती ने समता का वर्ताव करते हैं, कोई हो सबके साथ, सबका खाना पीना सबके साथ खाना पीना, वैसे सब नहीं रोटी का बेटी का सब होता ही करना। पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली है, कौन सी चीजें है जी? आपका खान पान, आपका वेश, एक आपकी भूषा, एक आपकी भाषा, एक आपकी रोटी और एक आपकी बेटी, ये पांच चीजें आपकी वास्तविक रक्षा करने वाली है। बोली भाषा है, आज भाषा को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं लोग, वो अंग्रेजी की सिवाय आपकी भाषा बोलने नहीं देते, अगर विद्यार्थी बोल जाए तो उसके ऊपर दंड होता है, जुर्माना लगता है, और उसी में जाकर पढ़ाते हैं तो भाषा पहले खत्म कर दिया। अंग्रेज बड़े धीर दृष्टि वाले हैं, मुसलमान ने तो जोर कर हिंदू बनाया, वे ऐसी मीठी सुना चलाते फीसर से फीसर में कि अंग्रेजी अंग्रेजी सीखाओ, बस हिंदी सीखे ही नहीं, सबसे बढ़ जाए ईसाई बढ़ जाए। पुस्तकों में पढ़ाई की पुस्तकों में हमने देखा है, लोगों ने सुना अंग्रेजी में जानता नहीं कि दोपहर में एक मित्र देखता है एक मित्र को दोपहर में गाय का बहुत बढ़िया होता है, पुस्तकों पढ़ाई की पुस्तकों में लिखा ईसाई में जो जहाँ पढ़ाते हैं कोर्स में है सब पुस्तक, इसमें ये बात लिखी तो वो खान पान वही सीखा हुए, तो खाना पीना वही सीखते शिक्षा भाषा वही वेशभूषा ही वो कॉटन से पूछ क्या तो से खड़ी छड़ी सब बताया, ये सब बता के आज है पैर कोट पतलून शीस पर कोटी चल रही है, अंग जमा जामा अंगा दिया चार अंगा जामा दिया चार सब पगड़ी खाद फाद भाई है कोट पैर पैर कोट पतलून टोप गोप शीस पर टोपी गोल जमाई है महाराज। आपने लीला अजब दिखाई है, वेशभूषा को छोड़ दी सब, वो क्या पगड़ी पगड़ी आई नहीं पगड़ी फाड़ को आई है, बिरवा लग गई पान सामने देख सुरमा मुस्काई है, जिस करती श्रृंगार देकर स्वागत भी शर्माई है, जिन महाराज कल जुग महाराज आपने लीला अजब जगाई है और वर्ण आश्रम सब बचा दिया, विरोध सब नारी, तो एक तो भाषा एक वेशभूषा जो आप वेशभूषा नहीं मिलती, वेशभूषा अंग्रेजों की, देखो अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी को लो। आज अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अंग्रेजी लेते नहीं, अंग्रेजी में बह जाते हैं। तो आपने अंग्रेजी विद्या ली नहीं, अंग्रेजी में दे दिया अपना। अंग्रेजी वही खान पान, वही भाषा, वही व्यवहार, वही खाना।
पुरानी बातें
ठीक है, नई बातें चलो सा मनुष्यों को थे पुरानी बातें। आजकल ये नई सभ्यता, एक सज्जन कहते थे कि कलकत्ते के बाजार में अपने साइकिल से साइकिल मोटर में जा रहा था, खड़े खड़े मूत रहा था यू बाजार में। ये आधुनिक सभ्यता है, समझे? ये नई जो है, कैसे ये नई रोशनी, बिल्कुल मनुष्यों में पशु की रोशनी नई रोशनी, हम भी नई रोशनी है, ये नई रोशनी बिल्कुल। और बजरंग है क्या? बजरंग बता दे भाई, थोड़ा कल जुग पस बता दे। हाँ गया, सुना भाई, सुना है कि नहीं बजर गया? तो ये कलयुग की महिमा है। जो महाराज वेश, एक तो भाषा, एक वेश, और एक आपका व्यवसाय, वो सब लोग सब काम करने अधिकारी। राज के लिए क्षत्रिय लोग लड़ते थे, आज ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर्य अंतिज सब राज के लिए लड़ते हैं। हमारे वोट दो, हमारे वोट दे। तो पहले क्षत्रिय लड़ते, अब चारू बन लड़े कि लड़ाई मिट जाएगी। 16 गुना तो लड़ाई होगी, क्योंकि सब बालकों के सबको अधिकार, तो चार बालों में होगा तो चारों का अधिकार, तो 16 हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ लोगों सैकड़ों तरह का भेद होगा और लड़ाई होगी आपस में। कल विरोध, कल प्रभाव विरोध संग हो रहा होगा, आप जैसा ये होगी। पर इसको तो सभ्यता मानते हैं, बढ़िया है, नई रोशनी है। ये तो तुम पुराने हो, ब्राह्मण सत्य सूर्य ब्रह्मचारी गृहस्थान पुरानी है, पुरानी। अरे भाई, पुरानी रीत से चलते हो, खाते हो, पीते हो, प्रतिपिशा फिरते हो, उल्टा कर दिया क्या आपने? पुरानी रीत है तो क्या बताऊं? तो क्या है ये कलयुग महाराज, सुना के है नई रोशनी, मिलको में नई रोशनी मिली उबा हुआ मुंह से। आज नई रोशनी है मिलको में, पशुओं में ही आती है, अब नई रोशनी आई है। अच्छी बात है, तो सुना दे कीर्तन सुना, अब फिर कहने पर क्या है। एक प्रश्न आया है कि गीता माता है कि यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्मै न प्रणश्यति। तीसवां श्लोक है, छठा अध्याय का। तो ऐसा कोई उपासना करे तो वो पीछे वासुदेव सर्व होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा तो फिर माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति और यो माम यो कहाँ रहेगा। अर्थात सब कुछ वासुदेव हो जाता है तो फिर भगत सब में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सबको देखता है, तो ये द्वैत भाव कैसे रहेगा। तो कई कहते हैं कि तुम ये हो तो वो वासुदेव सर्व नहीं होगा, ऐसी शंका है। अब ध्यान देकर सुने आप लोग, वासुदेव सर्वम ये भक्ति का ही श्लोक है। सातवें अध्याय के 16 श्लोक से 16, 17, 18, 19 ये चार श्लोक चार प्रकार के भक्तों के ही हैं। आप गीता देख रहे, जिनके पास में गीता हो वो निगाह कर लें। सातवें अध्याय के दो भाग है, 15 श्लोकों का एक भाग है, 15 श्लोकों का एक भाग है, यूं कई भाग किए जाते हैं बताए ही थे, पर एक ये भी भाग है। तो 15 श्लोकों तक का भाग पूरा होने पर चतुर्विधा भजन सेवा में आया है, क्योंकि 15 श्लोक आया कि मेरे दुष्कृति पापी होते हैं, मेरा भजन नहीं करते, पापी भजन नहीं करते, और ये दुष्कृति है और ये सुकृति है, ये भेद बताया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपज्यन्ते नराधमा माया भेदज्ञान असुरम भाव आश्रिता। तो नमाम दुष्कृति ने, दुष्कृति पुरुष है वो मेरे शरण नहीं होते, तो कौन होते हैं? चतुर्विधा भजन से माम जना सुकृति ने, यह दुष्कृति और सुकृति का भेद करने वाले श्लोक है दो, 15वां और 16वां। तो सुकृति भगवान का भजन करते हैं, तो ये चार श्लोकों में चार भक्तों का वर्णन है, उसका अंतिम श्लोक ही तो है वासुदेव सर्वम, भक्ति का ही है ये। 20वें श्लोक में काम से ज्ञान प्रबंधन से अन्य देवता, अन्य देवताओं के भक्तों का वर्णन 20वें श्लोक से शुरू होता, तो ये तो भक्ति का ही है, इस भक्ति में वासुदेव शुरू हो जाएगा। तो पहले भगवान में संसार है, संसार में भगवान है, इस भक्ति की सिद्धि होने पर भगवान ही भगवान है ये रह जाएगा, फिर संसार में भगवान, भगवान में संसार क्या देखे, संसार की सत्ता अलग होने से तो ये बात है, और भक्ति की जब सिद्धि होगी तो भगवान में संसार, संसार में भगवान नहीं रहेगा। जैसे 9वें अध्याय में 4वां-5वें श्लोक है, उन श्लोकों में मया तत्मिदं सर्वं, संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है और मेरे में सब संसार है, और मैं संसार में नहीं हूँ और मेरे में संसार नहीं है, ये चार बातें ही वहां 9वें अध्याय के 4वें और 5वें में ये चार बातें आई है, देख रहे आप। मेरे से संसार व्याप्त है और मैं संसार में हूँ और मेरे में संसार नहीं है, मैं संसार में नहीं हूं, बड़ी अटपटी बात बताई। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जब ठीक स्थिति होगी तो भगवान में संसार, संसार में भगवान कैसे रहेगा, संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, क्योंकि सत्ता है नहीं, रहेगी कैसे? क्या संसार की सत्ता है? अगर सत्ता स्वतंत्र हो तो भगवान और एक संसार दो रहेंगे, दो ही रहेंगे, फिर एक हो ही नहीं सकते, तो कैसे होंगे? इस वास्ते ये भक्ति का ही है, इसमें शंका बिल्कुल न करें। अब इस पर थोड़ी बात और कह दूं, यह सुकृति ने दुष्कृति ने जो पद आया है 15 श्लोक में दुष्कृति, 16वें सुकृति। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपज्यन्ते नराधमा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन। ये सुकृति है, अयोध्या में एक युगलानंद शरण जी महाराज हुए हैं, बड़े अच्छे संत थे, तो उनकी वाणी में आता है कि पुण्य है वो भी डेड है और पाप डेड है, डेड डेड है, पूरा तो नहीं है, डेड पुण्य है, डेड पाप है। कि महाराज डेड पुण्य कौन सा है? एक पुण्य है भगवान के सन्मुख हो जाना, भजन करना, ये भजन करना पूरा पुण्य, अब दुनिया की सेवा करना, उपकार करना, दान पुण्य करना, ये आज आप ये डर पुण्य है और डर पाप है कि भगवान से विमुख होना पूरा पाप और दूसरों के हत्या करना, दुख देना पाप नहीं, ये आधा पाप, ये डर पाप है, डर पुण्य है। तो पुण्य में पूरा पुण्य तभी है जब भगवान सन्मुख हो जाए। तो भगवान ने यही कहा, शुक्र विद्या भजन देव जना शुक्र दिन अर्जुन नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रभजन से नाराधमा। तो भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्यात्मा और भगवान से विमुख होना पूरा पापात्मा। हमारे को कोई बातें मिलती है ना तो हम देखते हैं गीता में, तो हमारे गीता मिल जाती है, बस गीता में बस मिलेगी। इस वास्ते कोई ये शंका न करे कि भाई भक्ति होगा तो विश्वास स्वरूप कैसे होगा। और वासुदेव सर्वम तो इसी में लिखा है, 19वें श्लोक में लिखा, 16वें श्लोक शुरू में 16, 17, 18, 19 चार श्लोक भक्ति के हैं। 20वां श्लोक है काम स्थिर ज्ञान प्रबंधन से अन्य देवता, दूसरे देवताओं के शरण होते हैं वो काम स्थिर ज्ञान, ये 20वां श्लोक आता है। तो भक्ति के वर्णन में ही है ये वासुदेव सर्वम। इस वास्ते ऐसा ऐसी शंका बिल्कुल न करें। अब एक बात जो मैं बताता हूँ वो अब बताता हूँ, एक तो बताइए युगानंद शरण जी महाराज की बात, अब दूसरी बात बताता हूँ। चाहे ज्ञान मार्ग से चले चाहे भक्ति मार्ग में, ये मार्ग है अलग अलग, ये सिद्धांत नहीं है, ये तत्व नहीं है, मार्ग है। अगर ज्ञान मार्ग को मार्ग न कहें, ज्ञान मार्ग तो है सिद्धांत और भक्ति मार्ग है साधन, ऐसा अगर माने तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा मानकर चलो, परंतु सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत क्या है? वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है, दोनों मार्गों के से यही होगा गाड़ी, सिवाय परमात्मा के और सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि और सत्ता है ही नहीं, सत्ता एक ही है परमात्मा की। उस सत्ता का विवेचन करने वाले तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं, वे कहते हैं एक पारमार्थिक सत्ता है, एक व्यवहारिक सत्ता है, एक प्रातिभाषिक सत्ता है। सत्ता के तीन भेद बताते हैं। तो एक जो वास्तविक पारमार्थिक सत्ता है वो तो एक परमात्मा ही है, यह है वास्तविक पारमार्थिक सत्ता। और व्यवहारिक सत्ता है संसार की, लेना देना होता है, खाना पीना होता है, आपस में अच्छा होता है, मंदा होता है, ऊंच नीच गति होती है, स्वर्ग है, नरक है, आदि आदि ये स्थान है, इनका पुण्य का फल पाप का फल होता है, ये इन संसार की सत्ता है, ये व्यवहारिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता तो सच्चिदानंद घन परमात्मा, ये पारमार्थिक सत्ता और ये व्यवहारिक सत्ता। रस्सी है ये व्यवहारिक सत्ता है, और रस्सी में जो सांप दिखता है ये प्रातिभाषिक सत्ता है, जिसका प्रतिभास होता है, दिखता है, मूल में होते नहीं, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। जैसे स्वप्न का संसार दिखता है, जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है, जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है, जैसे रूप में सीप में रूपा दिखता है, यह है प्रातिभाषिक, प्रतिभास होता है, प्रतीति होती है सत्ता, आगे देखो सत्ता नहीं है। भोलक हो रहा है, भोलक दूसरे से पड़ा, दूर से दिखे चांदी पड़ी है, ऐसा दिखता है, तो वो प्रातिभाषिक सत्ता है। इस संतों ने कहा संत का संसार सुख ढोडल रो भड़को दिखे दूर सोने हाथ नहीं अड़को दूर में चांदी पड़ी है जागे कागजों हाथ में जाए मिलना में कुछ नहीं। तो ये सुख है व्यवहारिक, परंतु व्यवहारिक को संतों ने प्रातिभाषिक कहा। वेदांत में योग वाशिष्ट है तो योग वाशिष्ट के सिद्धांत में व्यवहारिक सत्ता नहीं है, वहां प्रातिभाषिक है, वहां दृष्टि सृष्टिवाद है, दृष्टि ही सृष्टि है, क्या दृष्टि ने सृष्टि है ही नहीं, अब दृष्टि नहीं कर संसार है, ये दृष्टि सृष्टिवाद है। तो प्रातिभाषिक सत्ता ही है संसार की, और ये दृष्टि में सांप उनकी प्रातिभाषिक सत्ता दो सत्ता ही मानते हैं, एक प्रातिभाषिक एक बाहरी वास्तविक। व्यवहार है व्यवहार का प्रतीति होता है, व्यवहार है कहाँ, व्यवहार मिलेगा क्या, जयराम जी मिलना तो कुछ है नहीं, तो सत्ता जो तो अंत में मिलनी चाहिए ना, सत्ता है ही नहीं उसकी, मिले क्या, कुछ नहीं मिलेगा, धोखा होगा धोखा। जैसे अभी क्या ना संतों का जो है संत दास संसार सुख बोडल लो भड़को दिखे दूर सुहावनो हाथ नहीं अड़को कुछ नहीं मिलेगा कुछ नहीं। तो दो सत्य ही मानते हैं इस वासुदेव सर्वम, ये आखिरी सिद्धांत है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर एक हो जाते हैं सब, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। शैली दो तरह की है, अद्वैत सिद्धांत के जो आधुनिक ग्रंथ है उन ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं इसको ऊंचा माना है, वासुदेव सर्वम इसको नीचा माना है, पर गीता में मैं ब्रह्म हूं इसको नीचा माना है और वासुदेव सर्वम इसको ऊंचा माना है, इनमें दोनों में फर्क है। कहते हैं आप कहते हो गीता कहती है, मैं क्यों कहता हूं, मेरे कहने का मूल्य भी क्या है, मैंने कह दिया उसको मूल्य है उसका। गीता कहती वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, और वो कहते अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्व नहीं है और संसार है ये प्रतिभास होता है, ये अध्यासवाद है, ये अध्यासवाद सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत के ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं आता है, ब्रह्म सूत्रों में वर्णन नहीं, अध्यास है, खास वेदांत का ग्रंथ है, ये एक प्रक्रिया है, उसमें प्रतिभाषिक सत्ता मानते हैं और वो व्यवहारिक सत्ता मानते हैं। और अध्यात्म रामायण में आता है, अध्यात्म रामायण में लक्षण लिखा है, ये रण्य रण्य विभाव्य से भ्रमात् अध्यास मिथ्या उर्मम विपरीत असर्प भूते अभिभावनम यथा तद ईश्वर जगत, ऐसे ईश्वर जगत है। रामायण सुश्रीकृत में आता है यद सत्वाद अमृत भात सरलम रज्जो यथा हेर भ्रम। तो ये सिद्धांत नहीं है, ये वास्तव में साधना है, ऐसे मैं ब्रह्म हूं ये सिद्धांत नहीं है। मैं ब्रह्म हूं सिद्धांत कैसे होगा, जहां मैंपन रहेगा वह ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म होगा मैंपन नहीं होगा। किसी वेदांति से पूछ लो ब्रह्म में मैंपन है क्या, बढ़िया से बढ़िया वेदांति से जाकर पूछो आप ब्रह्म में मैंपन है, मैंपन है तथा तो वो ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म में मैंपन नहीं है, जो परमात्मा तत्व परिपूर्ण है उसमें ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म ये नहीं है। तो मैं ब्रह्म है यही है ज्ञान, इस बार तुलसी कृष्ण ने कहा सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंड, जहाँ भक्ति मणि का और ज्ञान दीपक का वर्णन है वहाँ सोहमस्म इति वृत्ति अखंडा, मैं वो परमात्मा का स्वरूप हूँ ये वृत्ति है, वृत्ति वृत्ति ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान वास्तु जो ज्ञान है वो वृत्ति ज्ञान नहीं है, वृत्ति ज्ञान माना क्यों ने परंतु वो आगे तक, और सच्चे पूछो तो अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है। दूसरी बात, मैं ब्रह्म हूं ये रहता नहीं है। तत्व ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान का काम है अज्ञान का नाश करना, परमात्मा की प्राप्ति करना ज्ञान का नहीं है। पंचदशी जो वेदांत अद्वैत सिद्धांत का अच्छा ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये समझा अहम ब्रह्म ये जो चीज है ये क्या होता है कि ये तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान होने पर परमात्म तत्व की जो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान भी शांत हो जाता है। अहम ब्रह्म ये ज्ञान जो होता है अज्ञान के मिटाने के लिए है, और अहम ब्रह्म नहीं रहता है। अज्ञान मिटाकर और ज्ञान भी मिट जाता है। कौन सा ज्ञान? जो संसार से अलग और परमात्मा का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं रहता है। दृष्टांत दिया है, जैसे दिया सलाई करी तो दिया सलाई से अंधेरा दूर हो गया और दिया सलाई खुद ही शांत हो जाती जल जाती है। ऐसे ज्ञान है वो भी शांत हो जाता है, रहता नहीं है, परमात्मा ही रह जाता है। इस बात मैं ब्रह्म हुआ कौन कौन कहे वहां पर, तो वहां भी वासुदेव सर्व में रहेगा। जहां मैं ब्रह्म हुए रहता हुआ है ये बात नहीं है। यद्यपि ग्रंथों में कहा है अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। अवधि अपार स्वरूप मम, मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूप अपार समुद्र है, उसमें लहरी विष्णु महेश, विष्णु महेश आदि लहरा है। विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश ये सब लहरा है, और मेरा स्वरूप स्वरूप अपार है। ये निशलता से निकाह, परंतु शंकराचार्य नहीं कहते ऐसा। शंकराचार्य कहते सत्य विभेदावगमे नाथ तवाहंग नमाम सामुद्रो ही तरंग कसम समुद्रो न तारंग। ये शंकराचार्य महाराज का षटपदी स्तोत्र है। षटपदी स्तोत्र छह श्लोक है इसमें, तो षटपदी होती है ना, तो षटपद नाम भंवरे का है। भंवर होता है नहीं, उस भंवरे को भ्रमर भी कहते हैं, उसको षटपद भी कहते हैं। छह पद होते हैं उसके भंवरे के, इस वास्ते से षटपद नाम भंवरे का है। तो ये हमारी स्तुति है, छह श्लोक है, ये षटपदी है, ये भंवरी है, षटपदी स्तोत्र छह पग हमारी भंवर। उस भंवरी में ये लिखा सत्य भी भेद आप का मे नाथ। महाराज भेद है, भेद मिट जाता है, परंतु बात क्या है, सत्य भी भेदावगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्वम, मैं आपका हूँ मेरे आप नहीं। मानो आपके स्वरूप में मैं समा जाऊंगा, मेरे स्वरूप में आप नहीं समाओगे। दृष्टांत दिया है सामुद्रो ही तरंग, तरंगा सामुद्र, समुद्र का तरंग होता है। कुसुम समुद्रो न तारंग, समुद्र तारंग नहीं है, तरंग का समुद्र नहीं है, समुद्र की तरंग है। ऐसे मैं तरंग हूँ आप समुद्र हो, ऐसा कहा। तो सिद्धांत शंकराचार्य महाराज का ठीक है, और वास्तविक सिद्धांत देखा जाए तो ये दोनों ही समझने के लिए है। जब तक अपनी सत्ता दिखता है, संसार दिखता है, तब तक ये बात है। तत्व में क्या होगा? तत्व में ना समुद्र है ना तरंग है, जड़ है। जल तत्व रहेगा, तत्व जल है, समुद्र जल नहीं है, तरंग जल समुद्र नहीं है, ये दोनों ही जल में नहीं है। तत्व जल है, जल जल रहेगा, ना समुद्र रहेगा ना तरंग रहेगी। ये जब तक जो भेद प्रतीत होता है, भान होता है, तब तक ये दृष्टांत है। तो वो तब तक है, उसमें भी मेरा स्वरूप तो अपार समुद्र है, विष्णु तरंग है, ये नहीं है। तब तक ये है कि भगवान तो समुद्र है, ये तरंग है सभी, ये शंकराचार्य ने कहा है। मन तत्व में आगे जाते समुद्र कहाँ है और कहाँ तरंग है, जल है, जल तत्व है, वो तो एक बूंद है जो जल है, अपार समुद्र है जो जल है, और प्रलय में जल ही जल हो जाता तो जल है, या वास्तव में जल ही रहेगा, जल तत्व है, समुद्र तत्व नहीं है, तरंग सत तत्व नहीं है, तत्व जल है। यह है सिद्धांत, तो यह सिद्धांत है, वही कहते हैं वासुदेव सर्वम। कैसे ब्रह्मभूत है ये, ब्रह्मभूत आता चौदह अध्याय में आता है, अठारहवें अध्याय में आता है, अठारहवें अध्याय में ब्रह्मभूत जहाँ निष्ठा ज्ञान से या पारा 49 से 55 तक ये अठारहवें अध्याय में ज्ञान का वर्णन है, उसमें कहता है निष्ठा ज्ञान से या परा, ज्ञान से परा निष्ठा, इससे बढ़कर ज्ञान की निष्ठा कोई नहीं है, इतनी परा निष्ठा जिसमें ज्ञान की बताई है, उसमें ब्रह्मभूत अवस्था बताई है, ब्रह्म भूया है कल्प से, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षती समस्त सर्वेशु भूतेषु भद भक्ति लभते पराम, 54 का श्लोक है। तो ब्रह्म भूया है, ब्रह्म रूप हो जाता है वो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम 53, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ब्रह्म भूषा जब ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्म भूषा प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, न इच्छा होती है न कोई द्वेष होता है न कांक्षती, ये ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत कल्प से ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु, फिर मद भक्ति लभते पराम, मेरी परा भक्ति की प्राप्ति होती है, अब भक्तिया माम अभिजानाती यावान यस्तास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्व तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्, उसके अनंतर ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भक्त ज्ञान मार्ग में ततो माम तत्त्व को ज्ञात्वा विशते, और भक्ति मार्ग में आपको बताया 11वां अध्याय के अंत में भक्तिया तुनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुंच तत्व प्रवेशुंच परंतप, आपको देख सकता है तत्व से, आपको जान सकता है, आप में प्रवेश हो सकता है, 3 बात होती है भक्ति से, ज्ञान मार्ग की जहाँ जहाँ बातें वहाँ देख रहा वहाँ जान करके प्रवेश होता है, ज्ञान और प्रवेश दो बात तो आ गई पर दर्शन की बात वहाँ नहीं आती। इस बात का कोई उल्टा अर्थ न समझे कि ज्ञान मार्ग छोटा हो गया और भक्ति मार्ग बड़ा हो गया, ये तात्पर्य नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, जिसकी रुचि भक्ति की है वो भक्ति का अनुष्ठान करे, जिसकी रुचि ज्ञान मार्ग है वो ज्ञान मार्ग चले, परंतु ये जो साधारण ज्ञान मार्ग के ग्रंथ है इन मार्गों से बाधा लगती है तत्व की प्राप्ति में, पहले से ही मैं ब्रह्म ये मान लेता है, वो मान्यता टूटनी बड़ी मुश्किल है, भूत प्रेत पिशाच ये होते हैं तो भूत प्रेत तो निकलना सुगम है, ब्रह्म राक्षस पिशाच हो जाए तो वो निकलना मुश्किल है, तो मैं ब्रह्म हूँ उसका क्या, उसका ये मिटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्रंथों से दृढ़ हो जाएगा, तो वो बिल्कुल अधूरा ज्ञान रहेगा, तत्व को प्राप्त नहीं होगा, ये बाधा लगेगी वहाँ, तब कभी भी अपने में ब्रह्म भाव में तो ब्रह्म ही वो शुद्ध से ऐसा नहीं करना, उपासना करो, ये उपासना है, ये तत्व नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है,
इसमें अभिमान नहीं होगा,
ना अभिमान इसमें कैसा होगा, अरे अभिमान नहीं होगा, इसकी विलक्षण बात बताऊं, 3rd अध्याय के 3rd श्लोक में भगवान का लोकेशन द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, तो सांख्य योग उपसर्ग वाला 5वें के आरम्भ में पूछा है 4th और 5वें अध्याय का 4th और 5वां लिख लो, देख लो उसमें सांख्य योग पृथक बाला प्रवचन थी न पंडिता, एक मप्या सत्या सम्यक उभयोर विन्दते फलम यह सांख्य ही प्राप्त से स्थानम तद योग ही अभिगम्य से एक सांख्य योग से यह पश्य स पश्यति। सांख्य और योग दोनों एक ही है, दोनों जो फल है उभयोर विन्द एक मप्या सत्या सम्यक चाहे सांख्य योग में हो जाए स्थित चाहे कर्मयोग में हो जाए उभयोर विन्दते फलम। दोनों फल क्या होता है, वो एक फल होता है, मेरा मेरा नहीं होता। अब थोड़ा विचार करना, एक बात कहता हूँ ध्यान दे सुनना। भगवान कहते हैं सांख्य योग का जो भेद करते हैं, सांख्य योग पृथक बाला प्रवजंती प्रवजंती, बाला बाल नाम है बच्चे का सुबह मूर्ख, बाल है ना बालिश है बाल, ये मूर्ख के अर्थ में आते हैं, वो बच्चा ही कुछ समझता नहीं। एक बात याद आ गई, हम माफ करेंगे, याद आ गई बीच में। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज आप जवाहरलाल जी से मिलो, जवाहरलाल बच्चा है, मेरे मिलने लायक नहीं है, वो बच्चा है बच्चा, ये समझते थे। वो क्या समझे इस बात बेचारे, बच्चा है तो बच्चा क्या समझेगा शत्रु को, वो मेरे मिलने लगे नहीं बच्चा है। तो परमात्मा शत्रु को नहीं जाने वो बच्चे ही, और क्या है बाल है मूर्ख है लंठराज है, वो क्या समझे। वो तो दो कहने वाले बालक हैं, मूर्ख है ऐसा कहा, दो कहने वाले बालक है वो ये कहा। और स्वयं कहते हैं तीसरे अध्याय में सांख्य योग दोनों क्या है कि लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे योगी नाम, ऐसी जो निष्ठा मैंने कही है तो दो निष्ठा भगवान खुद कहते दो के बालक है। ऐसा तेरे बीता सांख्य 39वां श्लोक दूसरे अध्याय का, ऐसा तेरे बीता सांख्य ऐसा जो 38वें में 38वां श्लोक सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ दया दयो।